हम बात करेंगे हिसाबो किताब की, बट वेन वी टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आखिरत, सो इट्स मीन आमाल पर आगाह करना। किसी का हिसाब तो बड़े कन्वीनियंट वे में होगा, किसी का सख्ती के साथ होगा। कयामत पे हिसाब कुफार का भी होगा और आम मोमिनीन का भी होगा, गाफिलीन का भी होगा, वासिलीन का भी होगा। तीसरी पेशी के वक्त नामा आमाल उड़ उड़ कर हाथों में आएंगे, बस कोई उन्हें दाएं हाथ में पकड़ेगा, कोई बाएं हाथ में लेगा। सबसे पहले जानवरों और कीड़े मकोड़ों का हिसाब लिया जाएगा, है ना अजीब बात। तो क्यों ना सच्ची तौबा ही कर लें, है सच्ची तौबा करके अल्लाह को राजी कर लें। ये हमारे ईमान का पाठ है, याद रखिएगा। इकरा किताब का, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? आपको हमारी वेब सीरीज कयामत के बाद में खुश आमदेद कहते हैं, आफ्टर जजमेंट डे। आज की एपिसोड में हम बड़ी दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे, बड़ी कमाल की चीज़ें मालूम होंगी, और हम बात करेंगे हिसाबो किताब की। जी हाँ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट हिसाबो किताब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। वो कैसे होगा, बुक ऑफ डीड कैसे हिसाब किताब होंगी, वो सब आपको इंशाल्लाह बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग, हिसाब का क्या माना है? शुमार, यानी काउंट करना। बट वेन वी टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आखिरत फॉर हेयर आफ्टर, सो इट्स मीन, इसका माना क्या बनेगा? अल्लाह ताला का लोगों को महशर से, जन्नत या दोजख की तरफ भेजने से पहले उनके आमाल पर आगाह करना। आखिरत में होने वाला हिसाब हक है। अब हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, गौर से सुन लीजिए। आखिरत में होने वाला हिसाब हक है, यानी आखिरत में यह हिसाब लाजमी होगा। इस पर अकीदा रखना हमारे ईमान का पार्ट है। यह अकीदा कुरान मजीद, सुन्नत और इजमा से साबित है। और यह भी याद रहे कि मोमिन, काफिर, इंसान और जिन्नात सबका हिसाब होगा, सिवाय उनका जिनकी एक्सेप्शंस, यानी जिनकी जो इस्तिस्ना है, अहादीस मुबारका में जिनके बारे में इस्तिस्नात आ गई हैं। यह अकीदा रखना कि आखिरत में कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये दायरा इस्लाम से खारिज करने वाला अकीदा है। ये हमारे ईमान का पार्ट है, याद रखिएगा। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि हिसाब की कैफियत कैसी होगी, क्या खास बंदों से भी हिसाब होगा, आम मुसलमान का हिसाब कैसे होगा, और गैर मुस्लिमों के साथ, नॉन बिलीवर्स के साथ क्या मामला होगा। ये बात याद रखें कि हर एक शख्स के हिसाब की कैफियत डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। किसी का हिसाब तो बड़े कन्वीनियंट वे में होगा, आसानी से हो जाएगा, किसी का सख्ती के साथ होगा, किसी का कॉन्फिडेंशली होगा, यानी उसको छुपा के हिसाब लिया जाएगा, किसी का ऐलानिया होगा, किसी का जजर और सख्ती के साथ होगा, तो किसी का फजल के साथ हिसाब किया जाएगा, उसके साथ अदल किया जाएगा। हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से उनके अपने आमाल और तबलीग के मुतालिक कोई सवाल नहीं होगा, उनसे सवाल उनकी उम्मतों के मुतालिक होगा कि उन्होंने क्या अकायद व आमाल इख्तियार किए, तुम्हारी कौमों ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया, तुम्हारी इताअत की या मुखालिफत की। उन अंबिया की शान तो बहुत बुलंद व बाला है, उनके बाज खादिमों का भी हिसाब किताब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कयामत पे हिसाब कुफार का भी होगा और आम मोमिनीन का भी होगा। मोमिनों में गुनाहगारों का भी हिसाब होगा, सालिहीन का भी होगा, गाफिलीन का भी होगा, वासिलीन का भी होगा, मगर हिसाब के अंदाज में फर्क होगा, डिफरेंट तरीके से, यूं समझिए कि उनका अलग अलग प्रोटोकॉल होगा। कुफार का हिसाब उन्हें रुसवा करने के लिए होगा, मोमिनों का हिसाब उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए होगा। देखे ना, किसी की रिपोर्ट अनाउंस हो, उसको पता है कि मेरे बहुत शानदार नंबर हैं और मैं जनाब बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, या मैं पोजीशन होल्डर हूँ, तो वो चाहता है मेरी रिपोर्ट का अनाउंसमेंट हो। तो क्या खूबसूरत जुमला हमने सुना कि मोमिनों का हिसाब उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए होगा, इसलिए मोमिनों के गुनाहों का हिसाब खुफिया होगा और नेकियों का हिसाब ऐलानिया होगा। कुफार के मुँह काले होंगे और मोमिनों के चेहरे रोशन होंगे। क्या शान है मेरे रब की। नाज़रीन, ये हिसाब व किताब ऐसा है कि इस पर गवाह भी पेश होंगे, और वो गवाह आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, वो एंजल्स जो हमारे साथ होते हैं और हमारे आमाल लिखते हैं। अल्लाह ताला आखिर में खुद भी बंदों को उनके आमाल बताएगा कि तुमने ये किया था। मैदान मैशर के हिसाब और कब्र के सवालों में फर्क है। कब्र में सिर्फ 3 सवाल होंगे, मगर हशर में जैसा बंदा वैसा उसका हिसाब। अल्लाह करीम हम सबको बेहिसाब बख्शते हैं। याद रहे कि कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर लोग 3 बार पेश होंगे। पहली 2 पेशियों में लोग हुज्जत पेश करेंगे, ये लोग अल्लाह के दुश्मन होंगे, दुश्मनाने खुदा होंगे। वो इसलिए झगड़ेंगे कि वो अपने रब को पहचानेंगे ही नहीं, उनके ख्याल में वो अपने रब से झगड़ कर निजात पा लेंगे और उनकी दलील और बात मान ली जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तीसरी पेशी के वक्त नामा आमाल उड़ उड़ कर हाथों में आएंगे, बस कोई उन्हें दाएं हाथ में पकड़ेगा, कोई बाएं हाथ में लेगा। ये पेशी मुसलमानों की होगी और ये सबसे बड़ी पेशी होगी। या हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि नामा अमाल कहां महफूज थे जो अब हवा में उड़कर बंदों तक पहुंचे हैं, तो उसका जवाब यह है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल नामे अर्श के नीचे हैं। जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक एक हवा भेजेगा जो आमाल नामों को उड़ाकर किसी के दाएं और किसी के बाएं हाथ में पहुंचा देगी। और नामा आमाल की पहली लाइन, या आप हेडिंग कह लें, तहरीर क्या होगी? फर्स्ट लाइन, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। फरमाया जाएगा कि अपने नामा आमाल पढ़, आज अपने मुतालिक हिसाब करने के लिए तू खुद ही काफी है। उस रोज वो शख्स भी पढ़ेगा जिसे दुनिया में पढ़ना नहीं आता था, यानी जो शख्स दुनिया में जाहिल था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो भी पढ़ लेगा। नामा अमाल मिलते वक्त लोगों की बड़ी अजीब कैफियात होंगी नाज़रीन। एक शख्स को उसका खुला हुआ नामा अमाल दिया जाएगा तो वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मेरी फुला फुला नेकियां जो मैंने की थी कहां गई? मैं अपनी बुक ऑफ डीड में, अपने नामा अमाल में उसे नहीं देख पा रहा हूं। रब ताला इरशाद फरमाएगा, चूंकि तूने लोगों की गीबत की थी, वो सब नेकियां मिटा दी गई। नाज़रीन, वाकई कुछ गुनाह ऐसे हैं कि नेकियां ट्रांसफर हो जाती हैं। हसद करने वाले के भी बारे में फरमाया ना कि हसद उसकी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसी तरह गीबत करने वाला जिसकी गीबत करता है, उसकी नेकियां उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आज के दौर में नेकी करना ही मुश्किल है और बंदा ऐसे गुनाह करे कि उसकी जनाब नेकियां ही तबाह कर दी जाए। नाज़रीन, हमें गौर करना है कि ऐसे गुनाह न करें कि बड़ी मुश्किल से कमाई हुई नेकियां कहीं जब बुक ऑफ डीड खुले, आमाल नामा खुले, तो वो डिलीट हो चुकी हो। अच्छा, फिर मोमिन नेक परहेजगार लोगों को उनका नामा आमाल रब्बे करीम के पर्दाए रहमत में अता किया जाएगा। जो अपनी बुराइयों को पढ़ेगा तो उन्हें पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। फिर जब वो अपनी नेकियां पढ़ेगा तो उसकी चेहरे की रंगत वापस आ जाएगी। फिर जब वो दोबारा नामा आमाल को देखेगा तो उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील किया जा चुका होगा। उस वक्त बंदा इंतहाई खुशी की हालत में अपनी जमात, अपने अहले खाना और कराबतदारों से कहेगा, कुरान पाक में आयत मौजूद है जिसका तर्जमा है, लो मेरे नामा अमाल पढ़ो, क्योंकि अब तो उसके गुनाह नेकियों में बदल गए होंगे ना। प्यारे व्यूवर्स, जिसको उसका नामा अमाल राइट हैंड दाहिने हाथ में मिलेगा, उसका हिसाब सख्ती के बगैर निहायत आसानी से होगा। उसके छोटे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और जिससे उसके तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा, वो अजाब से नहीं बच पाएगा। सबसे पहले जानवरों और कीड़े मकोड़ों का हिसाब लिया जाएगा, है ना अजीब बात। जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े कयामत जिस झगड़े का सबसे पहले फैसला होगा वो सींग वाली और बगैर सींग वाली दो बकरियों के दरमियान होगा। जब जानवरों और कीड़े मकोड़ों के दरमियान फैसला हो जाएगा और किसी का कोई हक बाकी नहीं रहेगा तो उनको मट्टी बना दिया जाएगा। फिर इंसानों और जिन्नों को उठाया जाएगा और अल्लाह पाक उनसे हिसाब लेगा। तो गैर मुस्लिम तमन्ना करेगा कि काश मैं मट्टी होता, मुझे उठाया ना जाता, मुझे दोबारा हिसाब किताब ना देना पड़ता। उसके बाद सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उनका रब उनसे फरमाएगा, तुमने मेरे पैगाम के बारे में क्या अमल किया? क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? वो अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, जी हाँ, मैंने पैगाम जिब्रील तक पहुंचा दिया था। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से रसूलों तक पहुंचाने के बारे में और रसूलों से उम्मतों तक पहुंचाने के बारे में सवाल किया जाएगा। उम्मतों से जब पूछा जाएगा कि रसूलों ने तुम तक पैगाम पहुंचाया, तो उस पर कुछ झुटलाएंगे, कुछ तस्दीक करेंगे। रसूल अर्ज करेंगे, हमारे पास इन झुटलाने वालों के खिलाफ गवाह हैं। अल्लाह फरमाएगा, गवाह कौन है? वो अर्ज करेंगे, उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी हाँ, ए नबी पाक के उम्मतियों, मुबारक हो आप, पिछली कौमों, पिछले नबियों की उम्मतों की भी गवाह हैं। चुनाचे उम्मते मुहम्मदिया को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम गवाही देते हो कि इन रसूलों ने हमारा पैगाम उम्मतों तक पहुंचा दिया था? वो अर्ज करेंगे, जी हाँ। दीगर उम्मतें कहेंगी, ऐ हमारे रब, ये हमारे खिलाफ कैसे गवाही दे सकते हैं? इन्होंने तो हमारा जमाना पाया ही नहीं है। तो अल्लाह पाक जानने के बावजूद फिर उम्मत मुहम्मदिया से सवाल फरमाएगा, इनके खिलाफ तुम कैसे गवाही दे रहे हो, हालांकि तुमने तो इनका जमाना पाया ही नहीं? तो वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमारी तरफ अपना रसूल भेजा और तूने हम पर एक किताब उतारी और तूने उसमें बयान फरमाया कि अंबिया किराम ने तेरे अहकाम की तबलीग कर दी थी, बस हम तो उसके मुताबिक गवाही दे रहे हैं जिसका तूने हमसे बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह, सूरह यासीन में आता है कि उस दिन अल्लाह पाक कुफार और मुजरमीन के मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके बॉडी पार्ट्स गवाही देंगे कि उनके जरिए क्या क्या बुरे काम किए जाते थे। इस तरह नेक मुसलमानों के बॉडी पार्ट्स उनकी नेकियों को बयान करेंगे। नाज़रीन, यहां दो बातें समझनी है। सुभान अल्लाह, कुरान के जरिए हमें पिछली कौमों के अहवाल और पिछली कौमों के प्रॉब्लम्स भी बयान कर दिए गए, लेकिन एक और कमाल की बात उलमा ये फरमाते हैं कि हम आखिरी कौम है ना, हमारे बाद तो किसी उम्मत ने नहीं आना। तो हम पिछली कौमों के तो गवाह हैं, हमारे ऐबों पर कोई गवाह नहीं है। अल्लाह ने कैसे हमारे ऐबों पर पर्दा डाला है, तो इंशाल्लाह मैशर के दिन भी वो करीम करम फरमाएगा, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। और आपने ये भी सुना कि बॉडी पार्ट्स, जी हाँ ये कुरान में है ना, सूरह यासीन पढ़ें आप, कि बॉडी पार्ट्स गवाही देंगे। तो आप जरा गौर कीजिए कि बाज़ुकात इंसान दरवाजा बंद कर देता है, किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, कि अब किसको पता है। एंजल्स, हिसाब किताब लिखने वाले फरिश्ते हमारे साथ ही हैं, वो अमाल लिख रहे हैं, तो वो भी गवाह हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स भी गवाह हैं। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए। आगे चलते हैं, हिसाब बैशर में किन किन चीजों के बारे में सवाल होगा, दैट इज अमेजिंग बात। इस हवाले से अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। मुफस्सरीन किराम इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं कि कयामत के दिन हर नेमत के बारे में सवाल होगा, चाहे वो नेमत जिस्मानी हो या रूहानी, जरूरत की हो या ऐशो राहत की, हत्ता के ठंडे पानी, दरख्त के साए और सुकून वाली नींद के बारे में भी सवाल होगा। जिस्म के एक एक हिस्से से क्वेश्चन होगा, हाथ, नाक, कान, आंखें, एक एक मसाम, हर चीज रब के आगे जवाब दे होगी। दुनिया की हर लज्जत के बारे में पूछा जाएगा। प्यारे व्यूअर्स, आज हम इज्जत के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमें इज्जत हासिल हो, सब हमारी रिस्पेक्ट करें, तो याद रखें इज्जत के बारे में भी बरोज़ क़यामत सवाल होगा, पूछा जाएगा कि इज्जत का नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, गलत जगह या किसी गलत मकसद को हासिल करने के लिए तो इज्जत इस्तेमाल नहीं की। बंदा जो भी कदम रखता है उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि इस कदम से तुम्हारा इरादा क्या था, वेयर वर यू गोइंग एंड वाई वर यू गोइंग। लोगों के सामने खिताब करने वाले, स्पीचेस देने वाले स्पीकर्स को भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज के बारे में सवाल होगा। सबसे पहला सवाल कयामत के दिन बंदे से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो कबूल हो गई तो फिर बाकी अमाल देखे जाएंगे, और अगर नमाज कबूल ना हुई तो फिर उसके किसी अमल को देखा तक नहीं जाएगा। अब वो लोग जो नमाज पढ़ते नहीं है, गौर कर लीजिए, पहला क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट जब हिसाब शुरू होगा तो नमाज की बात होगी, इतना इंपॉर्टेंट है नमाज पढ़ना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के साथ एक अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ ले गए और उससे फरमाया हमें ताजा खजूरें खिलाओ। बाग का जो मालिक था वो खजूरों के खोशे लाकर उसने पेश कर दिए। आप और सहाबा किराम ने उसमें से खाया, फिर आपने ठंडा पानी मंगवा कर पिया और इरशाद फरमाया तुमसे इस खाने और पीने के बारे में बरोज़े क़यामत ज़रूर सवाल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में भी सवाल होगा? इरशाद फरमाया हाँ, सिवाय तीन चीज़ों के, वो कपड़ा जिसके ज़रिए बंदा पर्दे के मकाम को छुपाए, रोटी का टुकड़ा जिससे बंदा अपनी भूख दूर करे, और वो खौ यानी वो ज़रूरत का घर जिसमें दाखिल होकर वो सर्दी गर्मी से बच सके। कयामत के दिन सबसे सख्त हिसाब सेहतमंद फारिग शख्स का होगा। इस तरह जिस शख्स का माल ज्यादा होगा उसका हिसाब भी इतना ही ज्यादा होगा। ये गौर करना है बात नाजरीन। मैं एक रिवायत सुनाता हूँ आपको, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे मुझे जो बेचारे जिनके पास माल कम होता है या बाज़ुकात दुनिया की नेमतें कम होती हैं तो अफसरदा हो जाते हैं, शिकवे कर रहे होते हैं। वो रिवायत का मजमून ये है कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाता है, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। यकीन करें, मैं जब जब इस रिवायत को पढ़ता हूं कैफियत ही और हो जाती है कि अगर आपको अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया और अगर आप सब्र कर जाए ना, तो सुबहान अल्लाह, ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि वहां आपके थोड़े अमल भी कबूल कर लिए जाएंगे। अब इसके अपोजिट वो लोग सोचे जिनको अल्लाह ने दुनिया में ज्यादा दिया है, अगर उनसे कयामत के दिन ज्यादा अमल मांग लिया तो कहां से लाएंगे? सोचने वाली बात है। जिसके पास दुनिया की नेमतें ज्यादा, उसका हिसाब भी ज्यादा। अब इसको आज दुनिया के दौर के हिसाब से समझ लेना, हम एयरपोर्ट जाते हैं, जिसके पास सामान थोड़ा होता है कस्टम से जल्दी फारिग हो जाता है, और जिसके पास सामान ज्यादा हो तो उसको अपना वेट भी करवाना पड़ता है, तो चेकिंग भी ज्यादा हो रही होती है। तो कयामत के दिन भी जितना दुनिया की नेमतें होंगी फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा। व्यूवर्स, हमारे यहाँ आज एक ट्रेंड बन चुका है कि अपने काम से काम रखो, किसी को कुछ नहीं कहना, कोई गुनाह हो रहा है, गलत काम हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है होने दो, किसी पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, खामोश रहो, अपने ताल्लुकात क्यों खराब करने हैं? हालांकि चाहे तो रोक सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर नहीं। ऐसे लोगों को भी इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में आता है कि उनसे कहा जाएगा, किस चीज ने फुला फुला मामले में तुझे बोलने से रोका था? वो अर्ज करेगा, लोगों के खौफ ने। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मैं ही इस बात का ज्यादा हकदार था कि तू मुझसे डरता। आई वॉज द वन हु डिजर्व टू बी अफ्रेड ऑफ मी। व्यूअर्स, جب بھی حساب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن گناہوں کی معافی مانگ لی جائے گی ان گناہوں پر بھی حساب ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور خود اس توبہ کرنے والے کے اعضاء اور زمین کی وہ جگہیں جہاں اس نے گناہ کیے تھے انہیں بھی گناہ بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہی نہیں ہوگا، کوئی وٹنس ہی نہیں ہوگی۔ یہ کمال کی چیز ہے توبہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج یہ حساب کتاب کی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ یہ چیز کا حساب ہوگا، گناہوں کا حساب ہوگا، تو کیوں نہ آج سچی توبہ ہی کر لیں، سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، گرگڑا گرگڑا کر معافی مانگ لیں، تو پھر تو انشاءاللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بھی بچ جائیں گے، لیکن پھر آگے گناہ نہیں کرنے۔ ہاں، لیکن میدان محشر میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور وہ سبحان اللہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ روایت میں 70,000 کا ذکر ہے، جبکہ کچھ میں تو بہت کثیر تعداد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے میری امت میں سے مجھے 70,000 ایسے افراد عطا کیے ہیں جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، میں نے درخواست کی تھی جس پر اللہ کریم نے مجھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، یعنی 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، اب یہ تو کتنے سارے ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کریم کی رحمت دیکھیں۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فرمایا، میں نے درخواست کی تھی جس پر اللہ کریم نے مجھے اتنے ہی اور افراد بھی عطا فرما دیے۔ اب کیلکولیشن آ گیا، آپ خود ہی کر لیں، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، ان کے لیے قیامت کے دن لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں اور خواب گاہوں سے جدا رہتے تھے؟ یہ اناؤنسمنٹ سن کر اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ جو اہل اسلام میں ہوں گے اٹھیں گے اور اس کراؤڈ سے نکل کر باہر آئیں گے اور حساب کتاب کے پروسیس سے گزرے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی لوگوں کو حساب کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے ناظرین؟ یہ اپنی نیندیں قربان کر کے راتوں کو اللہ پاک کی یاد اور مصلے پر گزارنے والے تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے تہجد کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ناظرین، اب آئیے اپنے ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لیے جاتے ہیں، وہ اعمال بھی سن لیں کہ جن کی وجہ سے حساب میں آسانی ہوگی۔ جو تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ جس کا دل لوگوں کے کھوٹ سے پاک رہتا ہوگا، اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے گا۔ یہ لوگوں کے لیے بری نیتیں، کینہ، بغض، برائیاں نہیں، دل صاف رکھیں، کلیئر رکھیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کا آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے داخل جنت کر دے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آسان حساب ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، مگر انعام کتنا بڑا ہے کہ حساب آسان ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں، جناب اس نے دعوت میں نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے، اس نے محروم کیا میں بھی اس کو محروم کروں گا؟ نہیں، جو محروم کرے اسے عطا کریں، جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو توڑے اسے جوڑیں۔ یہ کر لیجئے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے معاشرے میں بھی محبتیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ حساب کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بڑی پیاری دعا پر میں اپنے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آئیے مل کر لیتے ہیں۔ اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب کریم ہمارا حساب آسان کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور قیامت کے بعد کے معاملات سنیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ایپیسوڈ کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ نیکی کی دعوت آگے بڑھتی رہے۔